गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Thank you.
हरिनाम संकीर्तन की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीना श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की। समवेत भक्त वृंद की, समवेत भक्त वृंद की, समवेत भक्त वृंद की। श्री श्री गुरु गौरांग की, शील प्रभुपाद की। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 14 श्लोक संख्या 37। पुराणी अनेना सृष्टानि नृत्रियक ऋषि देवता शेते जीवेना रूपेण पुरेषु पुरुषः हि असौ। पुराण्यनेन सृष्टानि नृतीयर्गदृश्यदेवता शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषौहसौ पुराणेन सृष्टानि नृतीयर्गदृश्यदेवता शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषौहसौ शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा पुराणी रहने के स्थान या शरीर अनेना उनके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा सृष्टानी इन सृष्टियों में नृ मनुष्य तेरियाक मनुष्यों के अतिरिक्त पशु पक्षी इत्यादि ऋषि साधु पुरुष देवता तथा देवतागण देवगण शेते लेट जाते हैं जीवेन जीवों के साथ रूपेण परमात्मा के रूप में पुरेषु इन रहने के स्थानों या शरीरों में पुरुषा परमेश्वर ही निस्संदेह असौ वे पुरुषोत्तम भगवान। अनुवाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक पुर अर्थात रहने के स्थान बनाए हैं यथा मनुष्यों के शरीर पशु पक्षी ऋषि तथा देवता। इन असंख्य शरीर रूपों में श्री भगवान परमात्मा रूप में जीव के साथ निवास करते हैं, इस प्रकार वे पुरुष अवतार कहलाते हैं। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 18:61 में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्ररूराणि माया। हे अर्जुन, श्री भगवान सबके हृदय में स्थित हैं और सभी जीव मानो भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर स्थित हैं। उन सबके घूमने का वे निर्देशन करते हैं। जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश होने के कारण अपने अस्तित्व हेतु भगवत कृपा पर आश्रित है। जो शरीर के किसी भी रूप में सदैव साथ साथ रहते हैं, जीव एक विशेष प्रकार का भौतिक भोग चाहता है, अतएव श्री भगवान उसे ऐसा शरीर प्रदान करते हैं जो एक यंत्र की तरह है। इस शरीर में उसे जीवित रहने हेतु श्री भगवान उसके साथ पुरुष शिरोदक्षायी विष्णु के रूप में रहते हैं। इसकी पुष्टि भी ब्रह्म संहिता में की गई है। एकोप्यसौ रचियुतम जगदंड कोटिम यशक्तिरस्ति जगदंड चयायदंत अंडांतरस्थ परमाणुचयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने स्वांश के प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रविष्ट कर जाते हैं और इस प्रकार संपूर्ण भौतिक सृष्टि में अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करते हैं। जीवात्मा श्री भगवान के का अंश होने के कारण जीव कहलाता है। श्री भगवान पुरुष के रूप में जीव के साथ रहकर उसे भौतिक सुविधाओं का भोग करने देते हैं। पीछे से आवाज आई कि आवाज नहीं आ रही? वृंदावन में बैठ के मेरे जैसे व्यक्ति की आवाज निकलेगी भी कैसे? आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे कुछ भक्त खड़े हैं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। तो मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए श्रीमद् भागवत के जो कुछ हमने पूर्ववर्ती आचार्यों से भक्तों से श्रवण किया है उसको दोहरा सकें। तो यह श्रीमद् भागवतम का बहुत ही विशेष अंग है। विशेष क्यों है? क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन में क्या जिम्मेदारियां हैं उसको दर्शाता है। युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछते हैं कि गृहस्थ लोगों के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं, गृहस्थ धर्म क्या है, और नारद मुनि उस गृहस्थ को धर्म को वर्णित करने के लिए अभी बहुत सारे श्लोकों में व्याख्या कर रहे हैं। प्रथम धर्म तो है भगवान का भक्त बनना। यह प्रत्येक वर्ण पर्ण प्रत्येक आश्रम का धर्म यही है, भगवान कृष्ण का भक्त बनना। लेकिन भक्त कैसे बना जाए? क्या अपने मनमाने ढंग से भक्त बना जा सकता है? नहीं, हम भक्त बनते हैं आध्यात्मिक गुरु के मार्गनिर्देशन में। उसके बाद नारद मुनि बताते हैं कि आध्यात्मिक गुरु आपको क्या सुविधा देंगे। आध्यात्मिक गुरु आपको श्रवण करने का सदुपयोग देंगे। श्रवण के माध्यम से हम हमारी भौतिक आसक्तियों से छूटते हैं और कृष्ण से आसक्त होते हैं। तो फिर प्रश्न होता है, कृष्ण से क्यों आसक्त होना है, कृष्ण कौन है? तो नारद मुनि वहां पर बताते हैं कृष्ण परम पुरुष हैं, कृष्ण आदि देव हैं। और युधिष्ठिर को याद दिलाते हैं कि जब आपने राजसूय यज्ञ किया था तो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े देवता और हम भी सब उपस्थित थे, लेकिन अग्र पूजा किसकी हुई थी? कृष्ण की हुई थी, क्योंकि कृष्ण है आदि पुरुष, वो परम पुरुष हैं। तो पुरुष तो बहुत हैं, हम तो शौचालय के बाहर भी देखते हैं पुरुष महिला, पुरुष तो बहुत हैं। तो पुरुष, वास्तविक पुरुष कौन है? शास्त्र बताते हैं पुरुष वो है जो प्रकृति का नियंता हो, जो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित हो जाए वह पुरुष नहीं हो सकता। कोई सी भी प्रकृति, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, प्रकृति प्रकृति को वश में कर सकती है, वास्तविक पुरुष को प्रकृति वश में नहीं कर सकती। जो प्रकृति के वश में है वह प्रकृति ही है। जैसे एक बार पुरुषों की सभा हो रही थी और मंच से एक अनाउंसमेंट की गई कि ऐसे पुरुष जो अपनी पत्नी से नहीं डरते वो बाईं ओर आ जाइए, और ऐसे पुरुष जो अपनी पत्नी से डरते हैं वो दाहिने ओर आ जाइए। तो सब लोग भाग के तुरंत दाहिने ओर आ गए, एक व्यक्ति बाईने ओर खड़ा था। तो उसको स्टेज पे बुलाया गया, बड़े आपने बहुत बहादुरी का काम किया है, आपने ये जो साहस दर्शाया है इसके पीछे कारण क्या है? बोला मेरी पत्नी ने निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले बोला भीड़ भाड़ से दूर रहो, इसलिए मैं इधर खड़ा हूं। तो जो प्रकृति के वश में है वह पुरुष नहीं है। वास्तविक पुरुष कौन है? जो प्रकृति का नियंता है, वह है भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार यहां पर बताया जा रहा है कि पुरुष रूप से भगवान निवास करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं वो पुरुष कौन है, शिरोदक्षाय विष्णु। हर व्यक्ति को एक निवास स्थान चाहिए। निवास स्थान क्या होता है? उसको बोलते हैं पुर। पुर का मतलब है किला, महल या घर, ये सब पुर के पर्यायवाची है। और जहाँ बहुत सारे पुर होते हैं उनको पुरी बोला जाता है या नगरी बोला जाता है। शास्त्रों में सप्त पुरियों का वर्णन है, जिनमें से एक है मथुरापुरी, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी नहीं है उसमें हरिद्वार है, काशी है, द्वारका है, अयोध्या है और अवंतीपुरी है। यह सात पुरियाँ हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि भगवान कहाँ निवास स्थान है, भगवान का कहाँ निवास स्थान है? तो जब हिरण्यकश्यप से पूछा गया, हिरण्यकश्यप सप्तम अध्याय की शुरुआत में ही बताते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का पूरा स्थान कहाँ है, तो बोलता है कि मुझसे इतना भयभीत है विष्णु कि वो जा करके हर जीवात्मा के हृदय में बैठ गया है। ये मुझसे भय के कारण विष्णु हर जीवात्मा के हृदय में बैठा है। तो हिरण्यकश्यप भी वो सिद्धांत जानते हैं कि भगवान का निवास स्थान क्या है, हर जीवात्मा का हृदय है। यहाँ अलग अलग जीवात्माएं बताए हैं। पहला है नृनाम, मनुष्य। मनुष्यों के हृदय में जीवात्मा, मनुष्यों के हृदय में परमात्मा बैठे हैं। और अगर मनुष्य भोग भी करना चाहते हैं तो परमात्मा की इच्छा के बिना भोग भी नहीं कर सकते हैं। मिछे मायाबद्ध जीव आशा पाशे फिरे, तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे। ये माया में जो बद्ध जीवात्मा भी आशाओं के बंधन में इधर उधर घूम रहा है, वह भी कुछ नहीं कर सकता है जब तक भगवान उसको सम्मति ना दे। और देखिए यह जो सृष्टि है यह भी भगवान की सृष्टि लीला क्यों है? भगवान एक अवसर देते हैं भौतिक सृष्टि करने का कि जीवात्मा अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा कर ले। परमात्मा रूप से उसके हृदय में बैठ के उसको अनुमति देते हैं, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। और जो जीवात्मा आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ना चाहती है या भगवान देखते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान स्वीकार कर सकती है, उसको चैत्य रूप से भगवान परमात्मा उसको मार्ग निर्देशन करते हैं। हमारे सामने बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं लेकिन उनसे हम सब सीख नहीं पाते हैं जब तक परमात्मा अंदर से प्रेरणा ना दे। यहाँ वृंदावन में एक प्रमुख मंदिर है, लाला बाबू मंदिर। हाँ, लाला बाबू कहाँ से थे? कलकत्ता से थे। कलकत्ता में एक व्यापारी थे, अपना दैनिक जो कार्यक्रम था उसको पालन करते थे। एक दिन गंगा के घाट पर गए और दो धोबी आपस में बात कर रहे हैं। हम संस्कृत में वसन, वस्त्रों को वसन बोलते हैं। अब आपस में बात करते हैं, वो बोलते हैं इसका वसन तो जा ही नहीं रहा है, इसकी वासना जा नहीं रही है। इस तरह बातचीत जब कर रहे थे, लाला बाबू को परमात्मा ने अंदर से सिग्नल दे दिया। उनको लगा कि यह मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि मेरी वासना जा नहीं रही, तो मुझे भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। फिर नाव में बैठे तो नाविक जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हमें जल्दी जल्दी बैठो, हमको यहाँ से उस पार जाना है। तो फिर उनको चेतना आ गई, परमात्मा बोलते हैं हाँ हमको भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार जाना है, हम तो इतना भागवत श्रवण करते हैं रोज, फिर भी चेतना नहीं आती है क्योंकि परमात्मा ने अभी बटन बंद कर रखा है। लेकिन यहाँ परमात्मा निर्णाम मनुष्यों के हृदय में बैठे हैं और जो आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ना चाहते हैं उनको दिशा निर्देशन देते हैं भगवान श्री कृष्ण। और क्या बताया है? केवल मनुष्य नहीं, तिर्यक। तिर्यक का अर्थ है अलग अलग जनजातियाँ, चाहे वो पशु पक्षी हों चाहे वो पेड़ हो, अलग अलग जीवों के साथ भगवान निवास करते हैं और जीवों को वही निर्देश देते हैं। हम हरिदास ठाकुर के जीवन चरित्र में देखते हैं, वो जब पुरुलिया ग्राम में भजन किया करते थे तो उस गुफा में एक सांप भी था और गांव के लोगों को लगता था कि ये सांप इस साधु को काट लेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सांप कब काटेगा? जब परमात्मा गो हेड देंगे तभी तो काटेगा। परमात्मा अनुमति नहीं दे सकते अपने शुद्ध भक्त को काटने की। तो सांप को भी अवसर मिल गया हरिदास ठाकुर से नाम सुनने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उस प्रकार वो सांप भी शुद्ध हो गया। तो तिर्यक जीव जंतुओं के अंदर भी परमात्मा निवास करते हैं और उनको वही अनुमति देते हैं क्या कार्य करना है। उसके बाद ऋषि देवता, ऋषियों के भीतर, देवताओं के भीतर भगवान निवास करते हैं और उनका परमात्मा से संबंध इतना प्रगाढ़ होता है कि परमात्मा उनको सबके हृदय की बात बता देते हैं। हम बोलते हैं हमें हमारे गुरु को सब पता है। कैसे पता है? वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस ग्रुप में परमात्मा है और गुरुदेव हैं। परमात्मा उसमें सबकी जानकारी डालते रहते हैं और गुरु को सब पता लगता रहता है। इसलिए भागवत के शुरुआत में व्यासदेव नारद मुनि को गुणगान करते हुए बोल रहे हैं कि नारद मुनि सर्वव्यापी वायु के समान हैं, प्रकाशमान सूर्य के समान हैं और उन परमात्मा के समान हैं जो सब चराचर जीवों के हृदय में बैठे हुए हैं। अगले जब हम सुत गोस्वामी से सुनते हैं, वह भी इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी सभी जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा के समान बैठे हुए हैं। तो ये कैसे होता है? क्योंकि परमात्मा से शुद्ध भक्त का इतना प्रगाढ़ संबंध है, वो सब बात उनको बता देते हैं। हम प्रभुपाद की इतनी कथाएं सुनते हैं, प्रभुपाद अपनी कथाओं में अंतर्यामी के रूप में बहुत बार प्रकाशित होते हैं। भक्त बताते हैं कैसे प्रभुपाद मन की बात जान जाते थे। हाँ, जब प्रभुपाद ने इस्कॉन का प्रथम केंद्र 26 सेकेंड एवेन्यू में खोला तो वहाँ एक व्यक्ति आया करता था, ज़्यादा भक्ति में गंभीर नहीं था, तो प्रभुपाद का संग उतना प्राप्त नहीं कर पाया। बाद में उसको बहुत धन की प्राप्ति हो गई, उसके बहुत गाड़ी आ गई, नौकर चाकर आ गए, धन संपत्ति, घर, बहुत कुछ आ गया। तो बाद में कुछ सालों बाद बोस्टन में उसने सुना कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद वहाँ पर हैं, तो उनका दर्शन करने के लिए गया। लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि अभी मेरे पास धन आ गया, पक्का स्वामी जी डोनेशन मांगेंगे। हम तो करते ही हैं, किसी धनाढ्य व्यक्ति के पास जब जन्माष्टमी का कार्ड लेके जाएंगे तो उसको पता है नीचे से रसीद बुक भी आएगी, ये कुछ मांगेंगे पक्का। तो इस प्रकार मन से प्रभुपाद के पास गया, प्रभुपाद को प्रणाम किया, प्रभुपाद पहचान गए, उसके साथ बहुत वार्तालाप की, उससे परिवार, व्यापार इत्यादि के बारे में पूछा। और बाद में जब वो जाने लगा, एकदम गेट के पास पहुंच गया तो प्रभुपाद बोलते हैं, सुनिए, हम केवल चाहते हैं कि आप कृष्ण से प्रेम करें, हम डोनेशन नहीं मांगते हैं। तो ये बात प्रभुपाद को किसने बताई? तो हृदय में बैठे परमात्मा शुद्ध भक्त को उस प्रकार प्रेरणा देते हैं। तो सभी जीवात्माओं के हृदय में शेते भगवान लेटे हुए हैं। लेटे हुए क्यों हैं? लेटे हुए का अर्थ है सामान्यतः भगवान हृदय में उदासीन रूप से रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। जो भी हम इच्छा करते हैं उसके साक्षी हैं और अनुमति देते हैं, तब क्रिया आगे बढ़ती है। एक व्यक्ति से किसी ने पूछा गया, हमारे बीबीटी की एक आर्ट बुक है, महाविष्णु इत्यादि बहुत सारी उसमें पेंटिंग्स हैं, कृष्ण बलराम, वृंदावन लीला, दश अवतार, बहुत कुछ उसमें पेंटिंग्स हैं। उसको पूरी कृष्णा आर्ट बुक दिखाई और अंत में पूछा गया कि आपकी फेवरेट पेंटिंग कौन सी है? तो बोलता है, महाविष्णु की पेंटिंग मुझे सबसे अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? आपको कृष्ण लीला है, नरसिंह है, इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग, महाविष्णु क्यों अच्छी लगी? बोले, व्यक्ति सो भी रहा है, काम भी हो रहा है, इससे अच्छी बात और क्या है, और पत्नी पैर दबा रही है, इतना सुख आनंद कहाँ है इस दुनिया में। लेकिन भगवान लेटे हैं, उदासीन उनके लिए हैं जो भौतिक भोग करना चाहते हैं। और उन्हीं के लिए सक्रिय हो जाते हैं जो आध्यात्मिक संसार में जाना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ना चाहते हैं। गीता में हम अंतर देखते हैं, प्रथम अध्याय के कृष्ण और द्वितीय से 18वें अध्याय तक के कृष्ण अंतर है। प्रथम अध्याय में परमात्मा के रूप से लीला कर रहे हैं, ठीक है, बोलो, बोलते जाओ, और बीच में अर्जुन निर्देश भी दे रहा है, मुझे रथ बीच में ले जाओ, ठीक है, रथ बीच में ले गए। लेकिन द्वितीय अध्याय में आगे कृष्ण भगवान रूप से आदान प्रदान कर रहे हैं, तो निष्क्रिय से सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन सबके हृदय में क्योंकि परमात्मा है, इसीलिए हर व्यक्ति पूजनीय है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक पे जब टिप्पणी कर रहे हैं, वो बताते हैं कि क्यों इस तरह नारद मुनि बता रहे हैं, क्योंकि हर जीवात्मा में भगवान स्थित है, इसलिए हर व्यक्ति को पूजनीय मानना चाहिए। कई लोग बोलते हैं दरिद्र नारायण, ये सुन के तो प्रभुपाद बड़ा नाराज हो जाते थे कि दरिद्र नारायण क्यों है, दरिद्रता के कारण? दरिद्रता अगर भगवान का सूचक है तो यह तो बात सही नहीं है, क्योंकि वो लक्ष्मीपति है। एक दरिद्र, एक भिखारी एक मंदिर में रोज झाड़ू लगाता और मंदिर के बाहर बैठ के जप भी करता, तो एक धनी व्यक्ति मंदिर में आया, उसने सोचा कि इसको तो थोड़ी मदद करनी चाहिए, तो उसको उन्होंने थोड़ा धन दे दिया। अब शाम को वही व्यापारी जब मार्केट में जा रहे थे, वहाँ पर यही जो दरिद्र सुबह देखा था वो शराब पी के नाच रहा था, तो उसको व्यापारी ने हाथ पकड़ा और पूछा, क्यों तुम शराब भी पीते हो? सुबह तो देखा तुम बड़ा सात्विक हो, मंदिर में झाड़ू लगाते हो, जप करते हो, शराब क्यों पीते हो? वो बोलता है, मैं जप भी करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, कहीं भगवान ना बन जाऊं इसलिए कभी कभी पाप भी करता हूँ। तो ऐसे मूर्ख लोगों की सेवा करेंगे तो कर्म बंधन में और ज्यादा फंसते जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति, हर चराचर व्यक्ति में भगवान का निवास है, अमीर हो, गरीब हो, किसी प्रकार का जीव हो। तो कई लोग बोल सकते हैं ये तो मायावाद हो गया, हर व्यक्ति को भगवान के रूप से दर्शन करना ये तो मायावाद हो गया, और मायावादी को तो प्रभुपाद फिर इतना तिरस्कार करते थे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जगत तारिणी, तो उस प्रकार से प्रभुपाद कैसे सहन कर सकते हैं। एक बार एक मायावादी प्रभुपाद से मिलने के लिए आए, और मिले तो मिले, अपनी संस्था के इतने पर्चे लेकर के आए थे जो मायावाद उनकी संस्था थी, मायावाद भाष्य सुनीले होय सर्वनाश, और वो मायावाद के पर्चे लेके प्रभुपाद के पास आया, प्रभुपाद से बातचीत की और वो पर्चे प्रभुपाद के पास रख दिए। प्रभुपाद ने बोला ठीक है रख जाओ। जब वो बाहर गया, भक्त लोग बड़े विस्मय में पड़ गए, ये मायावाद के पर्चे प्रभुपाद ने रख क्यों लिए, दे देना चाहिए था, ये क्या बांटेंगे हम, क्या प्रचार करेंगे, क्या होगा। थोड़ी देर में पुजारी प्रसाद लेकर के आया, प्रभुपाद देख रहे हैं कुछ बांटने के लिए प्लेट डिस्पोजल नहीं है, वही पर्चों पे प्रसाद रख रख के भक्तों को बांट दिया। प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज युक्त वैराग्य है, यह युक्त वैराग्य है, ये ठीक मायावाद पर्चों का यही होना चाहिए। तो मायावाद से जितनी घृणा हमारे आचार्य लोग करते हैं, ये सब व्यक्तियों में भगवान का दर्शन करना, ये क्या मायावाद नहीं है? यह मायावाद नहीं है। स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देवेर स्फूर्ति। शुद्ध भक्त स्थावर जंगम जो कुछ वस्तुएं देखते हैं, जो कुछ जीवात्माओं को देखते हैं, सब में कृष्ण का प्रकाश देखते हैं, उनकी शक्तियों को देखते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस मंदिर में अपने कक्ष में बैठे थे और खिड़की खुली हुई थी, वहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा था और वह धूप प्रभुपाद के शरीर पर लग रही थी। प्रभुपाद एकदम स्वर्ण रूप से जगमगा रहे थे, बार बार खिड़की की तरफ देख रहे थे, तो भक्तों ने सोचा शायद प्रभुपाद को धूप परेशान कर रही है, तो एक भक्त ने उठा और पर्दा लगा दिया। प्रभुपाद बोलते नहीं नहीं पर्दा खोल दो, मैं कृष्ण का आलिंगन कर रहा था, ये सूर्य का प्रकाश है, कृष्ण की शक्ति ये मेरे ऊपर पड़ रही है, मैं कृष्ण का आलिंगन कर रहा हूँ। तो उस प्रकार हर वस्तु में, हर जीवात्मा में कृष्ण की स्फूर्ति को देखना, यह शुद्ध भक्त का दृष्टिकोण है। हर चराचर जीव में कृष्ण का प्रकाश है। मैं कुछ 3-4 दिन पहले एक पंडित जी से बात कर रहा था, उनका फोन आया और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि प्रभु जी तुलादान का बड़ा महत्व है, तुलादान यदि आप कराएंगे तो जिस भी व्यक्ति का तुलादान होगा उनके सारे रोग निवारण हो जाएंगे। हमने बोला अच्छा है, हमारे मंदिर में तो होता है तुलादान, बोलते नहीं नहीं आपके मंदिर में बड़ा गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? बोले वो एक ही बोरे को बार बार तुलादान करते हैं, ये ऐसा तुलादान नहीं होता, तुलादान करना है और फिर उसको पकाना है और पका के तपस्वियों को खिलाना है। तो हमने उनको पूछा कि अच्छा तपस्वियों क्यों खिलाना है, हम तो फूड फॉर लाइफ में सबको बांटते हैं। बोले नहीं नहीं सबको बांटने से फल नहीं मिलेगा, तपस्वियों को खिलाएंगे तो जो सुबह बैठ के 16 माला कर रहे हैं ना वो सब आपको मिल जाएगा और तब आपकी बीमारी जाएगी। अब ये भिखारियों को पापियों को खिला के आपको क्या फायदा मिलेगा? तो मैं सोच रहा था कर्म कांड में और भक्ति में कितना अंतर है। जब कोई दान भी करता है तो कितना सोच समझ के करता है। आपने नेताओं को देखा होगा कहीं कुछ वस्त्र दान इत्यादि करेंगे और जब व्हील चेयर वाला कोई आएगा तब वो लोग बोलेंगे फोटो लेके आओ, व्हील चेयर के साथ फोटो खिंचाएंगे, उनको मालूम है इसमें पब्लिसिटी ज्यादा है, तो देख करके व्यक्ति दान करता है। लेकिन कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो स्पेशल भंडारा करेगा जिसमें शराबियों को बुलाएगा, जिसमें नशा करने वालों को बुलाएगा, जिसमें नग्न घूमने वाले लोगों को बुलाएगा, अवैध संग करने वाले लोगों को बुलाएगा? कोई भी नहीं बुलाएगा। प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाके ऐसे लोगों के लिए अपने हाथ से भोजन बना के खिलाया। यह है चराचर व्यक्तियों में कृष्ण का दर्शन करना। अगर वास्तविक समाज सेवा करना है तो प्रभुपाद से सीखना है। हर व्यक्ति को उद्धार करने के लिए तैयार है, हर व्यक्ति को आलिंगन करने के लिए तैयार है, यह शुद्ध भक्त का भाव होता है। और ऐसे शुद्ध भक्तों को भगवान पारस्परिक संबंध रखते हैं। ऐसे भक्तों के लिए भगवान पुरुष रूप से निष्क्रिय रूप से सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान श्याम सुंदर रूप में दर्शन देते हैं। यही कृष्ण बलराम मंदिर में प्रभुपाद जी के एक सेवक, उन्होंने प्रभुपाद से जिज्ञासा की कि प्रभुपाद हमने सुना है परमात्मा हृदय में है, तो परमात्मा कैसे है, चतुर्भुज रूप में है, कैसे है? प्रभुपाद ने बोला हाँ योगी ऋषि मुनियों के हृदय में भगवान परमात्मा रूप से है, चतुर्भुज रूप से है, उपदृष्टा अनुमंता के रूप में है, लेकिन तुम भगवान के शुद्ध भक्त हो, तुम्हारे हृदय में भगवान श्याम सुंदर के रूप में है और तुमसे आदान प्रदान करेंगे। तो उस प्रकार शुद्ध भक्त के लिए भगवान श्याम सुंदर रूप में रहते हैं, वो आदान प्रदान करते हैं, भगवान प्रेम के लिए प्रकट होते हैं, प्रकाशमान होते हैं। हम लोग जो पुजारी सेवा करते हैं, जिनको भी अभ्यास है, उनको मालूम है भगवान के सामने बड़ा सुंदर आसन रखते हैं और उस आसन को सजाते हैं, पुष्प तुलसी इत्यादि रखते हैं और अपना आचमन लेके बैठ जाते हैं। इदम आसनम, स्वागतम स्वागतम, एतत्पाद्यम, इदम आचमनीयम, इदम नैवेद्यम पानीयादिकम, घंटी बजाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, घूम घाम के आते हैं, फिर विसर्जन कर देते हैं। इदम आसनम स्वागतम स्वागतम, भगवान आए बैठे खाए किसको पता है, हमारे आसन को स्वीकार किया नहीं किया किसको पता है। भगवान प्रेम के द्वारा प्रकाशित होते हैं। हम गोपियों के बारे में सुनते हैं जब भगवान अदृश्य हो गए रास मंडप से तो गोपियां गाने लगी, गोपी गीत रोने लगी, और जब माताएं रोती हैं तो काजल फैल जाता है, आंसू आ रहे हैं, तो अपनी चुन्नी से वस्त्र से उसको पोंछती हैं, उस पर उनका पसीना भी लगता है, उस पर उनके आंसू भी लग गए, उस पर काजल भी लग गया, बहुत कुछ गंदा हो गया। और जब भगवान प्रकट हुए तो गोपियां सोचती किधर बिठाएं किधर बिठाएं, तो एक शिला पर वही कपड़ा बिछा देती हैं और ना एकदम आसनम करती हैं ना स्वागतम तो स्वागतम करती हैं, भगवान उस पर बैठ जाते हैं। तो भगवान प्रकाश होते हैं भक्तों के प्रेम से, नहीं तो वह निष्क्रिय परमात्मा के रूप से तो हर व्यक्ति जो नास्तिक है उसके हृदय में भी है, पेड़ पौधे के हृदय में भी है। तो भक्तों में और उनमें पार्थक्यता क्या है? जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके लिए भगवान प्रकाशमान हो जाते हैं। गोपियों की कथा आई है तो एक और लीला स्मरण आ रही है। एक बार भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई और सारी गोपियां यथा स्थिति जैसे थी वैसे ही उठ करके आ गई रात्रि में, और जब आ गई तो भगवान का वही पुराना डायलॉग, क्यों आ गए, इतनी रात्रि में आना चाहिए क्या, सती नारियों का ये धर्म है क्या, आप क्यों आए, आप चले जाइए। तो गोपियां बोलती हैं कि नहीं, हम तो आपको शरणागत हैं, अशुल्क दासिका, कोई नौकर रखता है शुल्क दे करके रखता है, हम तो फ्री के आपके नौकर हैं, हमने आपको समर्पण किया है। भगवान बोलते हैं हमको समर्पण नहीं करना है, समर्पण करना है परमात्मा को करो, वो सबके हृदय में बैठे हैं, तो गोपियां बोलती हैं आपकी मेमोरी थोड़ी कच्ची हो गई है, आपको थोड़ा रिवाइज कराना पड़ेगा। हमने आपको बोला था नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मद्रिक। आप यशोदा और नंद के बालक नहीं हैं, हम जानते हैं आप कौन है। अखिल देही नाम अंतरात्मद्रिक, अखिल जीवात्माओं के हृदय में बैठे हुए परमात्मा आप ही हैं, तो आपके पास हम आ गए। कृष्ण बोले ये थोड़ा साइड में रखो, दूसरा लॉजिक। सती नारी को तो फिर भी घर से नहीं निकलना चाहिए, आपके पति वहां पर हैं, आपको सतीव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। और कृष्ण एक कहानी भी बता देते हैं, बोले आपको एक कहानी सुनाता हूं सती नारी की। कृष्ण बड़े उत्साह से बताते हैं, बोले एक जमाने में एक ऋषि यज्ञ कर रहे थे और वहां पर उनकी सती पति पत्नी पास में बैठी थी। यज्ञ जब पूर्ण हो गया, पूर्णाहुति के बाद ऋषि इतने थक गए कि वहीं पर पत्नी की गोदी में सिर रखकर लेट गए। अब पत्नी एकदम सतर्क बैठी हुई है कि कहीं मैं हिलूंगी डुलूंगी पति उठ जाएंगे, सती नारी है सेवा के भाव से बैठी हुई है, पति सो रहे हैं। इतने में उनका 3-4 साल का बालक वहां पर आता है और खेलते खेलते माता के पास आता है। माता तो हिलना नहीं चाहती है, तो जब माता से उपेक्षा मिली तो वह बालक चलता चलता यज्ञ की तरफ बढ़ने लगा। अब यज्ञ में धूं धूं करके आग जल रही है, माता रोकना चाहती है लेकिन पति को हिल जाएगी तो पति उठ जाएंगे, सती नारी है तो हिली नहीं। देखते ही देखते वह बालक अग्नि में प्रवेश कर दिया। कौन कहानी सुना रहे हैं? कृष्ण गोपियों को एक कहानी सुना रहे हैं। अग्नि में जैसे प्रवेश किया तो भी माता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, लेकिन माता का हृदय तो पुत्र के लिए व्याकुल होता ही है। एक आंसू नीचे गिरा पति के ऊपर, पति उठ गया, क्या हुआ? तब वो चित्कार करके बोलती है हमारा पुत्र अग्नि में प्रवेश कर गया। दोनों दौड़ करके जाते हैं, देखते हैं वो बच्चा तो अग्नि में खेल रहा है, उसको कुछ हुआ ही नहीं। तो पति बड़े गर्व से बोलते हैं देखा हमारा यज्ञ बल, हमारे यज्ञ बल के कारण पुत्र को कुछ नहीं हुआ। तो अग्नि देवता बोलते हैं ज्यादा खुश मत हो, ये तुम्हारा यज्ञ बल नहीं है, तुम्हारी पत्नी का सतीव्रता धर्म है जिसके कारण ये तुम्हारा पुत्र की रक्षा हुई है। अब गोपियां बोलती हैं हो गई आपकी कहानी, अभी हम एक कहानी सुनाते हैं, हमें भी कुछ कहानियां पता है। एक बार एक पत्नी और एक पति, आपने पति पत्नी कहानी सुनाई है तो हम भी पति पत्नी कहानी सुनाएंगे। तो गोपियां कृष्ण को बोलती हैं कि एक दंपति की कहानी हमको भी पता है, इतनी सतीव्रता कि जब पति भोजन करेंगे उसके बाद ही वो भोजन करती थी। तो पति ने निश्चय किया कि हमें व्यापार के लिए कहीं बाहर जाना है, तो पत्नी बोलती फिर हमारा क्या होगा, आप जब तक भोजन नहीं करेंगे हम भोजन नहीं कर पाएंगे, तो हमारा कोई समाधान कीजिए। तो पति बोलते हैं ये हमारा चित्र लीजिए, इस पेंटिंग के सामने आप भोग लगाना और पाना, ठीक है अच्छा समाधान है। पति चले गए, अब पत्नी 3 टाइम ऑफरिंग करती, पति का चित्र है उसके सामने थाली रखती, घंटी बजाती, ऑफरिंग करके फिर खाती, सती नारी है। अब व्यापार पूर्ण हो गया, पति वापस घर आ गया, गोपियां कृष्ण को बता रही हैं, दरवाजा लगा हुआ है, पति खटखटा रहा है, अंदर चल रही ऑफरिंग। तो पति चिल्ला रहा है गेट खोलो मैं थका हूं, बाहर बारिश हो रही है, मैं बड़े दिनों बाद आया हूं। और पत्नी अंदर से बोलती अभी डिस्टर्ब नहीं करो, पहले ऑफरिंग होगी उसके बाद गेट खोलूंगा। तो कृष्ण बताइए वो पतिव्रता है या नहीं है। तो कृष्ण वहां पर हार गए। कृष्ण को गोपियां बोलती हैं जब आप साक्षात पुरुष हैं तो बाकी फोटो वाले जो पुरुष हैं उनको सेवा करने से क्या लाभ है, आप वास्तविक पुरुष जब आ गए हैं सामने तो फोटो को ऑफरिंग नहीं करेंगे हम, आप हमारे वास्तविक पति हैं, वास्तविक पुरुष हैं। तो उस प्रकार भगवान भक्तों के साथ पारस्परिक लीला करते हैं और परमात्मा से श्याम सुंदर बन जाते हैं, और ऐसे भक्त हर चराचर जीव में भगवान का दर्शन करते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में बनारद मुनि परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौरनिताय की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल।